पदक भी पढ़ सकता है, यानी पांच मर्तबा भी कर ले, या अगर जिस वक्त तबीयत ऐसी मालूम हो कि ऐसा ऐसा रहे तो उस वक्त भी पढ़ ले, तो इंशाल्लाह इससे के लिए भी तीनों कुल और इसको मिला ले साथ में। بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولهم كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام سات سات مرتبہ حسبی اللہ الی آخری پڑھ لے گا تو کفا اللہ ما اهمه من امر الدنیا والاخره، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام هموم کے یعنی غموم کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت حسبی اللہ لا الہ الا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی اور آسمانی تمام بلا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت کے لیے صبح و شام تین تین دفعہ اس کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم میرے جا کنجی رکھی ہوتی نا ملفوظات کمالات اشرفیہ ہے وہ لے آؤ، اور اپنے دین اپنی جان اپنے گھر والے اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام تین تین دفعہ اس کو بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لے گا تو چار بیماریوں سے حفاظت رہے گی، من الجنونی والجزامی پاگل پن سے، جزام سے اندھا ہونے سے، اور فالج سے، یہ چار بیماری سے پاگل پن، اندھا پن، فالج اور اندھا ہونے سے، اندھا پن سے، پاگل پن سے، اندھا پن سے اور فالج سے، من الجنونی والجزامی والفالجی، چوتھی کیا ہے؟ دوبارہ کہہ دیا، چلو بارہ تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان معمولات کو پڑھنے کا اہتمام، فجر کے بعد تو زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، اسی طرح مغرب کے بعد بھی اس کا اہتمام کریں، اور خصوصاً تینوں کل اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو اہتمام سے پڑھائیں، جو آج کل جادو اور یہ چیزیں کی حفاظت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے جو اس طرز کو اختیار کیا کہ جو اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو زیادہ زیب و زینت مت کراؤ، اپنی اولادوں کو زیادہ زیب و زینت نہ کراؤ، اس کے اثرات ہوتے ہیں، زیب و زینت کے بناؤ سنگھار ہے، اور زیور پہنانے سے منع کرتے تھے، اور بلا خوز مغرب کے وقت نکلنے سے منع کرتے تھے، یہ سب، اور پھر رات کو نکلنا، یہ تو رات کو تو شیاطین کا وقت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کل راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت، اور صبح سوتے پڑے ہیں سارے، یہ بہت ہی نحوست کی چیز ہے، بہت نحوست کی چیز ہے، یعنی جسمانی صحت کے لیے تو مضر ہے ہی، جسمانی صحت کے لیے تو مضر ہے ہی، روحانی بھی مضر ہے، रूहानी भी मुदिर है, जिस्मानी भी मुदिर है। इसलिए इस चीज का एहतमाम किया जाए कि रातों को सवेरे सोए, जल्दी सोने की आदत डाले, सुबह जल्दी उठे, और अगर कोई ऐसे काम काज पे जाता है कि जी उसको है तो सुबह इशराक वगैरह पढ़ के फिर थोड़ी चलो आराम कर ले। इंसान है, उधर है तो उसको कोई वो नहीं है, तो कर सकता है। लेकिन ये रातों को बिला वजह देर से सोना, और फिर रिस्क में परेशानी की बात करते हैं, तो रिस्क तो रिस्क की तकसीम का वक्त तो ये है, और रिस्क की बरकत का वक्त तो सुबह है। अब सुबह तो सुते पाए हैं, फिर परेशान है रिस्क के लिए। इसलिए इन चीजों का ये एहतमाम किया जाए। ये छोटी बदाई ना, ये छोटी सी बातें, जहां सोच मगर ये चिंगारियां हैं। बजाय रहे ये छोटी सी बातें, जहां सोच मगर ये चिंगारियां हैं। यह गेमुल उम्मत की बात कल मैंने पेश की थी, आज दोबारा इसको आज हम उठा के ले आए, कि किताब भी मंगवा ली, ताकि बहुत अजीब मजमून है और इस जमाने के लिए निहायत जरूरी है। ये मलफूजात कमालात अशरफिया है, जो कि हकीमुल उम्मत के बहुत ही गरा कदर मलफूजात हैं, पढ़ने की किताब है, और इल्मी रूहानी एक खजाना है इसके अंदर। उसके अंदर फरमाते हैं कि तमाम, फरमाए के हिर्स यानी लालच तमाम परेशानियों की जड़ है। हिर्स और लालच तमाम परेशानियों की जड़ है। फरमाए ये ऐसा मर्ज है कि इसको उम्मुल अमराज कहना चाहिए, तमाम बीमारियों की जड़। माँ है ना, तो तमाम बीमारियों की जड़ क्या है, वो हिर्स और लालच है। क्योंकि इसी वजह से झगड़े फसाद होते हैं, इसी की वजह से मुकदमा बाजियां होती हैं। अगर लोगों में हिर्स से माल ना हो तो कोई किसी का हक ना दबाए। क्या जुमला है, अगर लोगों में हिर्स से माल ना हो तो कोई किसी का हक ना दबाए। इसी कायदे पर कर लो, अगर हिर्स से जा ना हो कोई, और अगर हिर्स से जाह ना हो यानी जाह और इज्जत तलब, तो इसी तरह माली हक भी नहीं दबाएगा और जानी हक भी नहीं दबाएगा। दूसरे को हकीर समझना, जैसे आगे आ रहा है इसी में। और फरमाया बदकारी और चोरी का मंशा भी लज्जत की हिर्स है। बदकारी और चोरी का मंशा भी लज्जत की हिर्स है। अखलाक रजीला की जड़ भी यही हिर्स है, यानी जुमला अखलाक गंदे अखलाक की जड़ वो यही हिर्स और लालच है। क्योंकि आरिफीन का कौल है कि तमाम अखलाक रजीला की असल किब्र है, तमाम गंदे अखलाक की असल वो किब्र है, यानी अपने को बड़ा समझना। और किब्र हवस जाही का नाम, क्या अजीब इल्म है। किब्र किसका नाम है, हवस है जा, हवस है कि बस मुझे बड़ा बनना है, यही तो है ना। इसी हवस में शरीयत के अहकाम को भी खातिर में नहीं लाता। इसी हिर्स और लालच में शरीयत के अहकाम को भी खातिर में नहीं लाता। यार एक काम करो, वो मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा है, उसको भी ले आओ, उसमें भी एक अजीब काम की चीज है, वो पर्चा नहीं है अभी, वो उसी में से सुनाते हैं। तो क्या फरमाएं कि आरफीन का कौल है कि तमाम अखलाक रदीला की असल वो किब्र है, अपने को बड़ा, अपने को बड़ा समझना। ये बड़े तो हो नहीं सकते, हम बड़े तो हो नहीं सकते, लिहाजा जब बड़े तो हो नहीं सकते तो बड़ा अपने को समझेंगे, इसलिए उसका नाम तकब्बुर है। तकब्बुर के बड़ा है नहीं बनता है, यानी बाबे तफाउल है, बाबे तफाउल बतकल्लुफ है, बड़ा नहीं, अपने को बड़ा समझता है। और किब्र हवस जाही का नाम है, बस किब्र का मंशा भी यही हिर्स हुआ, ये लालच है कि बस मैं बड़ा हो जाऊं। दादा बड़ा ऐसे बन जाता है, यानी अगर मौलवी को भी ये मर्ज हो जाए तो उसको भी होता है मैं मशहूर हो जाऊं, बस लोग मुझको बड़ा समझे। और यही चीज दीन के जितने शोबे हैं तमाम शोबों में ये जो खराबियां पैदा हुई है वो यही कि बस मैं बड़ा बन जाऊं। और जिसने किसी को अपना बड़ा बना लिया, जिसने किसी को अपना बड़ा बना लिया, अब उसकी बड़ाई तो खुद ही निकल गई। जब बड़ा बना लिया कि जी मेरा शेख है, मेरा मुरब्बी है, मेरा सरपरस्त है, उसको बड़ा निकाल दिया तो बड़ाई तो खुद ही निकल गई, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो बड़ा खुद ही निकाल देगा। सुभानअल्लाह, कैसी मजे की बात है ना। मुझे भी मजा आ रहा है क्योंकि मेरे भी बड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी बहुत कभी टेढ़ापन होता है तो माशाल्लाह हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैहि खिदमत में हाजिर होते थे, हजरत के तो आलम ही होता था, देख के पता चल जाता था कि क्या गड़बड़ करके आया, तो वही नचोड़ देते थे। हजरत वाला दावत बरकातुम की भी अल्लाह ताला उम्र बरकत आ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं तो सारा नशा काफूर हो जाता है। हालांकि हजरत इतनी शफकत और मोहब्बत फरमाते हैं कि बस तसव्वुर से बाहर है, इंतहा से बाहर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही होता है उसका। हजरत ये बड़ाई को हजरत ने फरमाया कि तमाम बीमारियों की ये जड़ है। अल्लाह 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 अल्लाह। और एक अजीब बात, चलो ये मजमून तो चल रहा है चलो, लेकिन बीच में एक मजमून अजीब है। हकीम उल उम्मत फरमा रहे हैं तो समझने की बात है, फरमाया कि अफसोस इन लोगों को खबर नहीं कि शरीयत में सल्तनत खुद मकसूद नहीं। फरमाया कि अफसोस इन लोगों को खबर नहीं कि शरीयत में सल्तनत खुद मकसूद नहीं बल्कि मुल्लापन ही मतलूब है, बल्कि मुल्लापन ही मतलूब है, और सल्तनत से मकसूद भी मुल्लापन ही का फैलाना है। और मुल्लापन की हजरत ने क्या तारीफ की, सुभान अल्लाह। अब देखिए कितनी अजीब, कितनी क्या अजीब हालत होगी हजरत की, जिसके कैसे मजे से मुल्लापन फरमाया। फरमाया कि शरीयत में सल्तनत खुद मकसूद नहीं बल्कि मुल्लापन ही मतलूब है, और सल्तनत से मकसूद भी मुल्लापन ही का फैलाना है। और दो चीजें इसमें, एक है दफे जरर और एक है जल्बे मनफात। दफे जरर ये कहते हैं, यानी दफे जरर से मुराद ये है कि जरर को नुकसान को दूर करना। क्या मतलब, शरीयत पर अमल करने में जो रुकावटें हैं तो सल्तनत होने से, हाकिम होने से उस रुकावट को दूर किया जाए। ये हो गई दफे जरर कि जी नमाज पढ़ना चाहते हैं और लोग परेशान करते हैं, काफिर परेशान कर रहे हैं, या मुसलमानों में मुसलमान नुमा काफिर वो परेशान कर रहे हैं, और ये ऐसे होता है। इसलिए फरमाना मिनल जिन्नति वन्नास, पता ना इंसानों में भी शरारती होते हैं और वो वसवसे डालते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि जो वसवसा डालते हैं इंसानों के दिलों में, मिनल जिन्नति वन्नास, तो ये शयातीन इंसानों की शक्ल में भी होते हैं, जैसे एंकर टीवी पे बैठे हुए, इनका काम ही वसवसे डालना। ये सारे उसी सूरह नास की इसके तहत में आते हैं और लोगों को परेशान करना और बातें छोड़ देना शरीयत के अहकाम पर गुफ्तगू। तो क्या फरमाया, सल्तनत से मकसूद भी मुल्ला पनी का फैलाना है। अब दलील देखिए, फरमाते हैं अल्लदीन इम्मकना, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लदीन इम्मकनाहुम फिल अर्दी अकामुस्सला वआतुज़्ज़का वअमरू बिल मारूफ वनाहयानिल मुनकर, यानी अगर उनको हम दुनिया में सल्तनत देते तो ये खूब नमाज पढ़ते, खूब जकात देते और खूब अमर बिल मारूफ करते और नहीं अनिल मुनकर करते। तो बताइए, इससे भी ये मतलूब और मकसूद है। तो इसलिए क्या फरमाया, शरीयत से मकसूद, सल्तनत से भी मकसूद मुल्लापन ही का फैलाना है। और मुल्लापन क्या है, अरे मियाँ तुम अजीब हो, नमाजें पढ़ो, इस जमाने में दाढ़ी शलवार का टखनों से ऊपर की है, ये क्या तस्बीह लेके अल्लाह 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 लगे हुए हो, यही मकसूद सल्तनत से भी है। सुभान अल्लाह, कैसी मजे की बात है ना। इसे क्यों लादा, वो लोग जो अगर वो जो महाज पे लड़ने वाले वो लोग हैं, ये भी मुल्लाओं के मोहताज हैं, क्योंकि किला का फतह करने के बाद वहां शरीयत का निफाज करना है, वहां मुल्लापन कायम करना है, तो उसके लिए तो मुल्ला ही चाहिए। इसलिए उलमा की शान आला है। अब आइए हिर्स पर दोबारा। इरशाद फरमाया कि हिर्स के मुक्तदा पर अमल करने से जी भर नहीं सकता, حرص کے مقتضا پر, یعنی جس چیز کا جس چیز کی لالچ ہوئی اور اس کا تقاضا پیدا ہوا تو سوچا یہ کہ اگر تقاضا ہوا چلو اس تقاضے پر عمل کر ڈالے تو دل بھر جائے گا, پھر دل نہ چاہے گا. تو فرمایا کہ حرص کے مقتضا پر عمل کرنے سے جی بھر نہیں سکتا, کیونکہ انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کے دو جنگل بھی ہوں جس میں سونا چاندی پانی کی طرح بہتے ہوں پھر بھی وہ تیسرے کا طالب ہوگا. بس یہ خیال ہی غلط ہے کہ حوث کے پورا کرنے سے حوث بجھ جائے گی, حوث کے پورا کرنے سے حوث بجھ جائے گی, بلکہ جتنا اس کو پورا کرو گے اتنا ہی بڑھے گی, جتنا اس کو پورا کرو گے اتنا ہی بڑھے گی. انسان کی حوث کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. لالچی آدمی کا پیٹ سوائے مٹی کے بھر نہیں سکتا, البتہ قناعت کی دولت پیدا ہو جائے اور دل میں نور آ جائے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے اور رضا بالقضاء اور قناعت کا نور دل میں آ جائے تو پھر ایسے شخص کو بادشاہت کی طرف بھی ذرہ برابر نظر نہ ہوگی. اور اگر وہ دنیا اگر دنیا کے کسی طرف جائے گا بھی تو اس کی اس دنیا سے بھی دین ہی مقصود ہوگا, اس کی اس دنیا سے بھی, کہ بظاہر وہ دنیا کے کام میں کچھ نظر بھی آئے گا کہ دنیا کے کام یہ فلاں کرنا ہے یہ فلاں کرنا ہے یہ لینا ہے, تو اس کی اس دنیا سے بھی دین ہی مقصود ہوگا. اور یہ یہی ہوتا ہے تربیت یافتہ حضرات کا کمال کہ ان کی دنیا بھی دین ہی ہوتی ہے اور ان کی دنیا سے بھی مقصود دین ہی ہوتا ہے. اور اس کی مثال حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے طلب کی بادشاہت کی کہ وہ بادشاہت مل جائے, اور بھائی تھا دارا وہ بھی اس کوششوں میں تھا لیکن دارا کی دوا دارو چل نہ سکی, اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ تاج و سلطنت عطا فرمایا اور دیکھ لیا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب کام کیا کہ کس طرح سے سلطنت کر کے دکھائی, گویا کہ وہ اس جز کے بھی مجدد ہو گئے کہ بادشاہ ہو کر خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے اور بادشاہت کے زمانے میں ہی ٹوپی سیتے تھے اور بادشاہت کے زمانے میں قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے اور اس سے اور بادشاہت کے زمانے میں مزدوری کی اور اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے, خزانے سے پیسہ نہیں لیتے تھے. اور پھر جو وہ کام کروایا فتاوی عالمگیریہ جو عرب کیا اہل عرب کیا فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے, ایسا غلغلہ مچا کہ عرب بھی بس آشش کر اٹھے. فقہ حنفیہ پر وہ کام کیا کہ سبحان اللہ, آج بھی سارے مفتی اسی کے محتاج ہیں, ام الکتاب ہے وہ. حضرت کیا فرمایا, گفت چشم تنگ دنیا دار را, یا قناعت پر کنت یا خاک گور. گفت چشم تنگ دنیا دار را, یعنی کہا گیا کہ جو دنیا دار کی جو آنکھ ہے وہ جو تنگ کہ حرص کی لالچ میں بھری پڑی ہے, یا تو اس کو قناعت کا موتی پور کرے گا یا قبر کی مٹی پور کرے گی. سبحان اللہ. فرمایا کہ فلسفے کا فلسفی مسئلہ ہے کہ کسی قوت سے جتنا کام لیا جاتا ہے اتنی ہی وہ قوت زور پکڑتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے. بس نگاہ بد کرنے سے نگاہ بد کو سکون نہ ہوگا بلکہ اس کی جڑ مضبوط ہوگی, اور ایک بار گھور لینے سے جو سکون ہو جاتا ہے اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے, کیونکہ یہ عارضی سکون ہے. پھر حضرت نے مثال کیسی دی, سبحان اللہ, کیا فرمایا کہ ایک بار گھور لینے سے جو عارضی طور پر سکون ہو جاتا ہے, فرمایا یہ عارضی سکون ہے اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر حضرت نے کیا مثال دی, جیسے تمباکو بابا کھانے والا ڈبل پتی راجا جانی کھانے والے کو ایک بار کھانے سے کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا ہے لیکن طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیسی عجیب مثال دی, ڈبل پتی راجا جانی اور بابا کھانے والے کیسی عجیب مثال دی, کہ وہ اس کو کھانے سے تو گٹکا اور اسی قسم کی فضولیات کھانے والا جب کھا لیتا کتنا سکون مل جاتا ہے, اور واہ واہ سکون مل گیا, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہی تماشا شروع. تو فرمایا بس یہی حال گناہ اور بدنظری کا ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے درخت کی جڑ میں جب پانی دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں نظروں سے غائب ہو جاتا ہے, مگر واقعے میں غائب نہیں ہوتا, ظاہراً تو غائب ہو گیا, حقیقت میں موجود رہتا ہے. کیسے؟ وہ اب شاخوں اور پتیوں میں رطوبت بڑھا کر ظاہر ہوگا, یعنی اب اس میں تری آ گئی اور جڑ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرے گا. پس جو لوگ مقتضائے تقاضہ پر عمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں تقاضے کو کم نہیں کرتے بلکہ اس کی آبیاری کرتے ہیں, یعنی اس کو مزید پانی دے رہے ہیں کہ بجائے اس کو روکتے اس کو مزید پانی دے کر اور مضبوط کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ صاحب و نور اسی میں ہے کہ تم کو گناہ کا تقاضا ہو اور تم تقاضے کا مقابلہ کرو, اس تقاضے ہی سے تو تقوی کا حمام روشن اور تقوی کا کمال ظاہر ہوتا ہے. شہوت دنیا مثال گلخنس کہ ازو حمام تقوی روشنس. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی تقاضے اور شہوت کے تقاضوں کی مثال ایندھن کی طرح ہے کہ اسی سے تو تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے. مقاومت تقاضا سے یہ تقاضا زائل تو نہ ہوگا مگر ضعیف ضرور ہو جائے گا, یعنی شروع شروع کے اندر جب وہ تقاضا جب اس پر عمل نہ کرے گا تو اس تقاضے پر عمل نہ کرنے سے وہ تقاضا ختم نہیں ہوگا. یہ تقاضوں کی شدت ہے لیکن اس کی شدت میں کمی آ جائے گی, آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آتی جائے گی, جس کے بعد پھر مقاومت سہل ہو جائے گی. اور یہ بھی بڑا نفع ہے کہ دشمن ضعیف ہو جائے, اور یہ بھی بڑا نفع ہے کہ دشمن یعنی ہمارا نفس یہ جو ہے وہ ضعیف ہو جائے. سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور عجیب, ایک سے ایک عجیب ہے, بس چھوڑ چھوڑ کے پھر بھی. لیکن فرمایا کہ کام میں لگنا چاہیے, یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا نفع ہوا, کیفیات بھی ہیں یا نہیں, حظوظ اور لذائذ بھی ہیں نہیں, مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اس کو بھی نہ دیکھے. اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے رات کو پسنہاری آٹا پیستی ہے مگر اس پیسنے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکی سے گر رہا ہے یا نہیں, اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ کس قدر جمع ہو گیا, پیسنے کی دھن لگی رہتی ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کام کیا اب کیا ہوا, اب دیکھو کیا ہوا, ایسے نہیں, کیے جاؤ. صبح کو جب دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے تمام چکی کے گرد آٹا جمع ہے. اگر رات بھر یہ کرتی کہ ایک چکر چکی کا گھما کر آٹے کو ٹٹولتی کہ پاؤ بھر بھی آٹے کو ٹٹولتی کہ کتنا آٹا, تو فرماتے ہیں پاؤ بھر بھی آٹا نہ پیس سکتی. علاوہ اس کے اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد اور اعتقاد کے کام چل نہیں سکتا. یعنی شیخ کا حق بتایا کہ اس علاوہ اس کے ایک یہ چیز ضروری ہے کہ جس پر جس کو اپنے سپرد کیا ہے بغیر اعتماد بغیر اعتقاد اور بغیر انقیاد کے کام چل نہیں سکتا. جب جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے بس اسی پر اطمینان کرنا چاہیے. السلام علیکم. اچھا بعد میں بات کریں گے. اور ایک بات اور فرمائی کہ اہل اللہ پر تانا زنی کے متعلق یہ دونوں شعر پڑھے کہ ہیج قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نامت بدرد, کہ اللہ تعالی نے کسی قوم کو رسوا نہ کیا جب تک اس نے کسی صاحب دل کو نہ ستایا. اور فرماتے ہیں چو خدا خواہت کے پردہ کسے درد میل شندر تانائے پانکا ورد. فرماتے ہیں جب خدا کسی کو اس کی بدعمالیوں کے سبب کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے توفیقات ہٹا لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ والوں کی غیبتیں اور اللہ والوں سے بدگمانی اور اللہ والوں سے جنگ شروع کر دیتا ہے. اب وہ جو بڑی عجیب بات, اب لائٹ بند کر دو بھائی. یا اللہ یا اللہ, पढ़ा सही नहीं जा रहा। जब वो चश्मा उतार के पढ़े समझ जाना बुढ़ा हो गया। ये जो है वो हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इफादात बनाम मकालात सूफिया से माखूस किया है, जिसका तर्जुमा मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेख के कल्ब को मुकद्दर करने का वबाल। फरमाया मैंने उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि हर इफ्तराक की इब्तिदा शेख की मुखालफत से होती है, यानी इफ्तराक फर्क पैदा करना दूरी। मतलब ये कि जो शख्स अपने शेख की मुखालफत करता है वो उसके तरीके पर बाकी नहीं रहता और उनके दरमियान बातनी इलाका ताल्लुक खत्म हो जाता है। अगरचे एक मकान में इज्तिमा भी रहे, यानी साथ बैठे हुए भी हों, बज़ाहिर साथ बैठे हुए भी हो, लेकिन ताल्लुक खत्म हो जाता है। पर जो शख्स किसी शेख की सोबत में रहे फिर अपने दिल से उस पर एतराज करे तो उसने अहदे सोबत को तोड़ दिया और उस पर तौबा वाजिब हो गई। अलावा इसके सूफिया इकराम ने यह भी फरमाया कि हुकूक मशायख के खिलाफ करने की कोई तौबा माफी नहीं। हजरत जामे दामतुल इफादा फरमाते हैं, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वजूब तौबा से वजूब शरई मुराद नहीं बल्कि उस खास शेख से नफा हासिल करने के लिए तौबा शर्त है। उस खास शेख से नफा हासिल करने के लिए तौबा शर्त है, क्योंकि नफा की शर्त असल में इंशिराव इंबिसात है और वो आदतन औद नहीं करता। यानी क्या मतलब है कि जब एक मरतबा दिल दुख गया तो जब तक अच्छी तरह उससे तौबा ना करवाएगी, माफी ना मांगेगा उसके, और उसका दिल जब तक ना खुलेगा और उसको एतमाद पैदा ना होगा तो उस शेख का फायदा उसको ना मिलेगा। और उससे जो अजीब मजमून जो असल था वो सुनाना, वो बहुत अजीब कि शेख की रजा और नाराजगी के नताइज अक्सर शेख की मौत के बाद जाहिर होते हैं। फरमाते मैंने शेख अहमद बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि जिससे शेख राजी होता है शेख की हयात में उसको जजा उसकी नहीं दी जाती ताकि उसके कल्ब से शेख की ताजीम कम ना हो जाए, और जब शेख की वफात होती है उस वक्त अल्लाह ताला रिजाए शेख की जजाए हसन जाहिर फरमाते हैं। उसी तरह जिससे शेख का कल्ब मुतगय्यर हो गया। अरे यार कहां शेख का फोन आ गया। और जिससे इसी तरह जिससे शेख का कल्ब मुतगय्यर हो गया यानी दिल खराब हो गया, उसका बदला भी उसको शेख की जिंदगी में नहीं दिया जाता ताकि उस पर शेख कुर्बान ना हो जाए। ये अजीब बात फरमाई है, यानी उस पर फरमाया ताकि उस पर शेख कुर्बान ना हो जाए, यानी उस पर रहम ना खाए। ये माने हकीम उम्मत ने इसके किए, अल्लाह अकबर। क्योंकि फरमाया क्या उफ आफू व करम इन हजरात की तबीयत में दाखिल होता है। फिर जब शेख की वफात होती है उस वक्त उसकी नाराजगी का बदला दिया जाता है। अजीब बात, यानी शेख की रजा का बदला भी जिंदगी में नहीं मिलता कि अगर शेख खुश है तो उसके आसार उसकी हयात के बाद जाहिर होते हैं और मुरीद के हालात से पता चलता है और उसके जो इनामात से पता चलता है कि शेख इससे राजी और खुश था। और जिससे शेख जिंदगी में नाराज हो तो उसकी नाराजगी का बदला भी उसके वफात के बाद दिया जाता है और उसके वफात के बाद उस मुरीद के हालात वो बता देते हैं कि शेख उससे राजी है या खुश है, राजी था या खुश था। और इसमें एक वाकया किमल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम का। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हकीम उम्मत के खास खादिम थे जो हजरत की खिदमतें खास करते थे, तो फरमाते हैं कि मैंने उनको देखा कि मस्जिद में जमात की नमाज हो रही है और वो हट्टे कट्टे बैठे हुए बाहर। तो हजरत फुरपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने अर्ज किया, हजरत फरमाते तो हजरत फुरपुरी ने फरमाया कि मैंने उनसे बात पूछी थी तो वो कहने लगे कि बात यह है कि हकीम उम्मत का इंतकाल हो चुका था कि जब मैं मस्जिद जाने लगता हूँ जब मैं मस्जिद जाने लगता हूँ तो हकीम उल उम्मा डंडा लेकर मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं और मुझको मस्जिद में जाने नहीं देते। तो हज़रत फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बज़ाहिर इसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि इन्होंने अपने माँ बाप को सताया था, एक वजह तो क्या थी, इन्होंने अपने माँ बाप को सताया था क्योंकि लोगों को माँ बाप के सामने बोलने की आदत है। यहां तक के इसको भी बेअदबी फरमाया कि अगर हक बात भी कहनी है, यानी वालिद गलती पर, मसला क्या है कि वालिद और शेख गलती पर, उस वक्त में भी अदब का पहलू हाथ से ना छोड़े। और बाज मर्तबा ये तो वाकया से पता चलता है, बाज मर्तबा खामोश रहना भी अदब में शामिल होता है, यानी उस हक पर ना बोलना ये अदब होता है। और ये चीज, यही तो वो चीज है कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें नूर अता फरमाएगा। फुरकान, फुरकान मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी ने फरमाया कि ये नूर फारिक है, बैनल हक वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान नूर वो फर्क करता है। और ये सोहबत शेख से मिलता है, ये कैसे मिलता है, सोहबत शेख से। इसलिए बाद मरतबा माँ बाप के सामने, उस्ताद के सामने, शेख के सामने, यानी हक है, हक बात है और वाजे वो गलती पर है, लेकिन उस वक्त में खामोशी ये अदब होता है। या अगर उसको बात अरज भी करनी है तो फिर नहायत दर्जे का अदब चाहिए और उसको भी सीखना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो फरमाया क्या कि अपने माँ बाप को सताते थे, कि माँ बाप को सताना, और ये जो दीनदारों पर एक गलबा होता है, और वो गलबा ये होता है कि गोया अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की उसमें माँ बाप के हुकूक और रिश्तेदारों के हुकूक में बहुत कमी करते हैं। हम दीनदारों की बहुत बड़ी वो है, दुनियादार तो हुकूक की परवाह ही नहीं करता, उसके तो इसका है ही नहीं, लेकिन हमारे दीनदार हजरात भी अक्सर अपनी दीनदारी के ज़ोम में हुकूक को छोड़ देते हैं। और ये बहुत खुद एक निहायत खतरनाक बात है। चलो इसकी एक मिसाल समझे, मेरे एक ऐसे रिश्तेदार जिसका मुझ पर बहुत ज्यादा हक है, निहायत करीबी रिश्ता, और उनके बेटे की शादी वो हॉल में थी और टेबल कुर्सी भी थी, पर्दा तो था लेकिन टेबल कुर्सी भी थी और हॉल भी था। मेरा मामूल हॉल में जाने का नहीं है, ना मैं हॉल में जाता हूं और टेबल कुर्सी को भी लात मारता हूं, लेकिन वो रिश्तेदारी इतनी करीबी थी कि उस वक्त हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इसी में बात भी है कि बाज मरतबा तकवा के किसी दर्जे पर अमल करने के बजाय फतवे पर अमल किया जाता है। हाँ ये है, फरमाया कि हुक्म शरई ये है कि अगर तकवा के किसी खास दर्जे पर अमल करने से दूसरे की दिल शिकनी होती है तो फतवा पर अमल करना चाहिए, यानी ये, लेकिन ये चीज सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं इसकी वजह से कि जी उसका दिल खराब हो रहा है मूवी बनवा लो, मूवी बनवाना और है, तस्वीर खिंचवाने की बात और है, लेकिन तस्वीर खिंचवाने से अगर मना करना है एक चुपके से निकल के भाग जाओ, बस एक तरीका है। तो इसलिए फरमाया कि किसी खास दर्जे पर अमल करने से दूसरे की दिल शिकनी हो, लेकिन दिल शिकनी का एक मसला है, यानी दिल शिकनी इस चीज सीखने की है कि दिल शिकनी हो तो फतवा पर अमल करना चाहिए। गोया कि ऐसा कि अब हॉल है, शरी पर्दा भी है और जनाब वो कोई और वैसी बात नहीं है, हाँ ये हॉल है कि हॉल को हमारे हजरत ने इसराफ फरमाया कि कई चीजें उसमें ऐसी गुलू और इसराफ की चीजें जमा है और टेबल कुर्सी पर भी है, तो इस पर फरमाया है। यहां पर ये मसला, तो लादा मैंने रिश्तेदार की शादी में शिरकत भी की। क्यों? क्योंकि वो हुकूक का मसला था, क्योंकि अब ना जाते, अभी यहाँ खिलाफ सुन्नत का मामला आया, ना जाते तो रिश्ता टूटने का अंदेशा था। तो ऐसे वक्त में, ऐसे ही वक्त के लिए सिखाया और समझाया कि ऐसे वक्त में तकवा के किसी खास दर्जे पर अमल करने के बजाय फतवा पर अमल करें, ये है वो चीज। तो फरमाया क्या, इसलिए हमारे दीनदार हजरात ये बहुत ज्यादा ये करते हैं। और फिर एक बात है, देखिए एक होता है शरीयत का उसूल। अब मसला ये है कि कयाम नमाज में फर्ज है, पहले इस बात को समझे, फिर मैं इस बात से जो बात समझाना चाहता हूँ वो बताऊंगा। कयाम नमाज में फर्ज है, यानी नमाज खड़े होकर पढ़ना ये फर्ज है, और फर्ज का मसला ये है कि अगर वो फर्ज काम नहीं किया तो नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना जी। अब ये मसला अगर आप किसी को बयान करते हैं वो तो सारे लोगों पर फतवा लगा देगा जो बैठ के नमाज पढ़ना, चाहे वो नफली वाले हों और चाहे वो मरीज हो, तो बैठकर नमाज वाले पर फतवा लगाएगा तो लेटने वालों को तो क्या करेगा। तो इससे पता चला कि पूरे दीन को सीखना जरूरी है, उसके कुछ मा लहू मा अलह होते हैं। और अब इसमें क्या है, नफिल नमाज पढ़ने वाले को नबी ससल ने इजाजत दी है कि वो बगैर किसी वजह के भी बैठ के नमाज पढ़ सकता है, नफिल नमाज बगैर किसी वजह के भी बैठ के पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता उसका ये नतीजा निकलेगा कि सवाब अदा हो जाएगा, ये भी समझा दिया आपने, तो पता चला एक इस्तिस्ना हुआ ना। अब मसला असल यही है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है, यहां तक कि ट्रेन में जहाज में भी बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, अगर से कितने ही झटके आ रहे हो, या तो झटके ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए कि अभी झटके खत्म हो जाए, फिर जैसे कभी टर्बुलेंस होता है यानी हवा के दबाव वगैरह होता है, तो ऐसे हालत हुई तो थोड़ा इंतजार कर ले, कोई मरना थोड़ी जरूरी है। या और अगर झटके मोतादिल हो जाए लेकिन वो मामूल के झटके हैं, जैसे जहाज पे झटका तो आएगा, रेलगाड़ी का तो झटका मामूल की चीज है, वो तो होगा ही, तो उसके लिए शरीयत ने इतनी इजाजत दी है कि तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो लेकिन पकड़ लो, एक हाथ से पकड़ लो लेकिन नमाज खड़े होकर पढ़ो। तो अब ये चीजें, अब उसने एक मसला सीख लिया कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, लेकिन मरीज को इजाजत है कि वो बैठ के नमाज पढ़ेगा, खड़े होने पर कादिर नहीं है। तो इसी तरह जब शेख कोई बात अपनी पेश करता है, कोई मजमून बयान करता है, तो असल तो वही होता है, उसूल वही होता है, लेकिन कुछ उसके मुस्तस्नियात होते हैं। इसलिए मुरीद और जो बयान सुनने वाले हजरात होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई ऐसे मामलात पेश आए तो मुशावरत करें। ये जो हजरात अपनी मर्जी चलाते हैं कि शेख के किसी अमल को देखा, उसने एक अफजल पर अमल किया या कि तकवा के किसी खास दर्जे पर अमल किया, फिर उसका एक उसका अल्लाह ताला जैसे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को एक मकाम दिया। अब हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कैमरा छिनवा लेते थे, बल्कि होता ये था आता था मुझे मुंडाओ इसकी, मुझे साफ करो इसकी। और फौजी कर्नल, आप बताए फौजी ब्रिगेडियर की मुझे मुंडवा दिए हजरत ने, और वो क्यों ना कर सका। और यहां हम अगर किसी आम आदमी की भी मुझे मुंडवा दे वो तो कहेगा अच्छा ठीक है तू बाहर निकल, मालिक आगा के सामने देख तेरी कैसी ठुकाई लगाते हैं। तो वो उन हजरात का मकाम है। और इसलिए कहा कि उन हजरात, हजरत लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह पर एक हाल था, और वो हाल ये था कि हजरत जिसकी दाढ़ी ना उसको बैत नहीं फरमाते थे। हजरत लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह, और बात भी सही, यानी हजरत के इस काम की तावील यह है कि भाई जब तू शेख की बात ही नहीं मान रहा तो तू शेख क्यों बना रहा, तुझे शेख पर तो एतमाद है नहीं, तू दाढ़ी तो रख नहीं रहा, तुझे शेख पर तो एतमाद नहीं, तू आगे क्या बात मानेगा। तो बात बिल्कुल ठीक है। अब एक है ये तरबियत, ये हजरत का एक शेख के दर्जे पर फाइज होना। एक हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का एक जमाना था कि हजरत बगैर दाढ़ी वाले को बैत नहीं फरमाते थे, लेकिन एक जमाना आया हजरत सबको बैत कर लेते थे। वो क्यों? ये भी एक तरबियत का अंदाज कि भाई इस बेचारे ये तो है ही मरीज, इसी मरज ही की वजह से तो ये आया है, और बैत के लिए कह रहा है, ये भी तो अपने मरज का इलाज ही चाहता है, अब हकीम उम्मत थानवी कितने एक उसूल पर कितने मजबूती से कार फरमा रहने वाले, जब एक शायर वो पहुंचे हफीज जौनपुरी, जब वो पहुंचे सफर करके आए तो उन्होंने आकर हजरत से बैत की दरखास्त की। सफर करके आए थे, थोड़ा थोड़ी जो है ना दाढ़ी बढ़ गई थी, उस जमाने में सफर तवील होता था, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी जरा कुछ बाल निकल आ गए थे। खानका में हज्जाम बुलवाकर खानका में से वहां पे उन्होंने दाढ़ी मुंडवाई। शायर हफीज जौनपुरी ने, एक जमाना ऐसा था, हजरत से बैत की दरखास्त की तो हजरत आप पकड़ लिए, फरमाया ये मुझे बताओ जब तुम बैत होने के लिए आए थे, तुम दाढ़ी रख के तुम्हारी दाढ़ी निकल आई थी, तुमने ये क्यों किया, ये हरकत क्यों की। अब उनका जवाब सुनिए, अब देखिए क्या अर्ज किया, अगरचे शायराना बात है लेकिन इखलास देखिए। क्या हजरत आप हकीमुल उम्मत हैं, मैं मरीजुल उम्मत हूँ, मैंने अपना मर्ज आपके सामने रख दिया। अब ये तरबियत थी, उनका इखलास था। हजरत फरमाते आखिर में तीन दिन आखिर मरने से पहले उनका यह हाल था कि तड़पते हुए इधर जाते थे, तड़पते इधर जाते, रोते थे अल्लाह से इस्तिगफार तौबा, और इसी तड़पने की हालत में उनका इंतकाल हो गया और ऐसी मौत को शहीद की मौत कहा गया, ऐसा हालत। तो यह शेख की तरबियत का एक अंदाज होता है। तो मैं आरज कर रहा था कि हजरत फूलपुरी ने फरमाया, एक तो हो जाती माँ बाप को सताना और दूसरी वजह यह थी कि जो खानकाह में जो लोग आया करते थे, अब इंसान है, आने में कुछ ताखिर हुई, सफर है, बीमार है, नमाज को नहीं पहुंचा, थोड़ी देर से पहुंचा, बस वो फौरन चुगली लगा देना हकीम उम्मत से, शिकायतें करना, हकीम उम्मत डांटते थे। अब उसमें बड़े बड़े उलमा होते थे, एक आम आदमी भी है लेकिन उसका अल्लाह से क्या मामला, हमें क्या पता। तो हजरत डांटते थे तो फरमाए इस पर ये दो बवाल थे कि मरने, वो जो बात है ना अजीब, ये मैं महफूज अभी पढ़ा कि मरने के बाद जो है वो शेख की रजा और शेख की नाराजगी, शेख के खुश होना या शेख का नाराज होना, दोनों शेख के इंतकाल के बाद इसके असरात जाहिर होते। फरमाए उसकी जो वजह कि अगर शेख की, क्या हकीम उम्मत ने इसकी वजह बयान की, वो शेख ने बयान की कि फरमाए उसकी वजह यह कि अगर जिंदगी में अच्छे असरात जाहिर हो गए तो वो उसके दिल में किबर तकब्बुर और रोजू पैदा हो जाएगा, तब तो मैं हो गया, मुझे शेख की जरूरत नहीं है। उससे वो उजुब की तरफ और गुमराही की तरफ चला जाएगा, और अगर नाराजगी के असरात जाहिर हो गए तो इन अल्लाह वालों का दिल नरम होता है, ये तो माफ किए माफ कर देंगे। जैसे एक बुजुर्ग का वाक्य हजरत ने सुनाया कि एक शख्स ने किसी एक अल्लाह बुजुर्ग तशरीफ ले जा रहे थे, खादिम साथ में था, गाली दी तो उन बुजुर्ग ने फरमाया इसको थप्पड़ मारो। उसने कहा ये इतने हलीमुल मिजाज और अफू करम वाले आदमी और थप्पड़ मारने को कह रहे हैं, वो खादिम रुक गया। उन्होंने कहा हजरत ऐसे ही तहमुल हुआ था, हजरत तो बर्दाश्त करते हैं, हमें सिखाते भाई दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। बस ये कहना था कि वो शख्स धड़ से गिरा और उसी वक्त इंतकाल हो गया, उसका मर गया वो। तो हजरत ने फरमाया कि उन बुजुर्ग ने उस खादिम से फरमाया देखो मैंने तुमसे कहा था इसको थप्पड़ मारो, क्योंकि अगर मैं बदला ले लेता, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे ही इसने मेरे साथ ये मामला किया अल्लाह का अजाब चल पड़ा, तो अगर मैं इससे बदला लेता तो अल्लाह ताला का अजाब रुक जाता। सुभान अल्लाह, पता चला ये इन अल्लाह वालों का बदला लेना भी, इन अल्लाह वालों का बदला लेना भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने के लिए, ये है इनका अफ़ और करम, कि इनकी जो वो माफी और हिल्म और दिल में जो नरमी है, ये इसका असर भी बाज मरतबा बस सूरत बदला जाहिर होता है। तो फरमाते इसलिए ये हकीम उम्मत ने इसको नकल किया इस मजमून को कि जिंदगी में उस नाराजगी के असरात जाहिर नहीं होते कि वो इंतकाल के बाद जाहिर होते हैं, ताकि जो है वो अपने दिल की नरमी की वजह से उसको माफ ना कर पाए। कितनी अजीब बात फरमाए, इसी पर है, इसलिए किसी शेख के मुरीदीन को देखना उसके इंतकाल के बाद देख ले कि वो क्या चीज है, उससे पता चल जाएगा कि उसका उसकी जिंदगी उसके तर्ज जिंदगी और उस पर अल्ताफात इनामात और मेहरबानियां, ये पता चल जाएगा कि शेख अपनी जिंदगी में उससे कैसा राजी था या नाराज था। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक, अपने बड़ों की अजमत और मोहब्बत अता फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह।